کسی بری بوده مهاراج من کنی جانم شوان صاحب کو پردا کرده باتو ایسو لوگو بیوار من کی بیوار کی سبی پرسنسا کرے کیوں نہیں کرے کیوں ابھیمان کو بم انس نے سوارتھ کو بم انس نے اور سب کے ساتھ سم بیوار سب نے مالک مانے سب نے ایک پرکار سے مالک مانے سب خوش ہو گیا ایک دن راجا بولو کہ میرے بھیا بہت دن ہو گیا اب تو تم راج تلک کرا لی بن میں جا کر کے تپسیا کرا دیکھا تمہیں رونا لگ گیا بولے مہاراج آپ وطن دیا جی کہنا بھول گیا کہ میں تیاگ کر جاؤ آپ جڑے چالو بڑی ہمت نے چالو بولے راج کو کام بولے راج کو کام تو دیوان ہے وہ راپ کرتی کیا ہے میرا تو مہاراج آپ کی سیوا ہی پرم دھرم ہے ٹھیک ہے اٹھی راجا پھر راجا صاحب بڑے رہا اور وہ سیوا کرتے ہوئے یہ تو ایک دستان اس لیے داستان تو میں گھٹانا اس لیے تو بھگوان کی بھکتی میں گھٹانا بھکتی میں کیسے کہ یہاں راجا کون ہے کہ راجا تو ہے پرماتما اور دیوان صاحب کون ہے کہ راجا کا ایک نمبر بھکت اور وہ کلر کون ہو کہ بھگوان اور بھگوان کا بھکت بھگوان کا داس اور وہ داسان داس اور وہ نوکر بولے وہ میں کو داس داسان داس داسان داس تو بھگوان کا جو سیوک داس ہے اور ان کا جو داس ہے اور ان کا جو داس ہے ان کے ساتھ کے ماں پریم کر کر کے اور وہ ایک پرکار سے اس پدوی میں پراپت ہوتی اور اس کے بھیتر کے بیچ کے ماں نشکام بھاؤ کتنوں کسی سے کچھ بھی لے لوں اور سم بھاؤ کتنوں کہ کوئی بھی آئے کو ستکار کروں سب نے ایک پرکار سے تو اس پرکار سے وہ جو داسانداس جو ہے نشکام بھاو کے پربھاؤ سے سیوا کے پربھاؤ سے نروان کے پربھاؤ سے وہ اس سے اس پدوی نہ پہنچ گئی اسی پرکار سے اپن جو سنسار کے بیچ کے ماں بھگوان کا جو بھگت ہے اور ان بھگتوں کا بھی جو بھگت ہے ان کی بھی اپنا سیوا مل جائے تو بھگوان کی کرپا سے اپنا ادھار ان کو بڑی بات نہیں پھر بھگوان کی سیوا سے ہو جائے اور بھگتان کی سیوا سے ہو جائے اس میں تو کرن کیا ہے تو اس میں یہ بات بتلائی کہ ایک تو نشکام بھاؤ ہونا چاہیے اور ایک ہنکار کو نام نشان نہیں رہے اور ایک بینے بھاؤ ہونا چاہیے اور ایک میں سب میں سم بھاؤ ہونا سب میں ہیتو رہی پریم ہونا چاہیے تو پھر سمجھے کہ اس کو چلتے پھر سمے ادھک نہیں رہتا تو دیکھو کہ بھگوان کی دیا کی تو کوئی سیما نہیں ہے جبکہ ایک تجھ جو پرانی ہے جی کو ایک پرکار سے بھگوان کے پد میں پراپت ہوئے ہو جو نمن شری کو کیسو کہ وہ بھگوان میں سمجھو کہ بھگوان مہاپرش ہے اپنے کے برابر کوئی نہیں ہے بلکہ بڑی بھاری دیا ہے اور ان کے سنسرگ کرنے والا جو ہے نکٹ رہنے والا اور سمجھ رکھنے والا ان کو بھی کتنا بھاری آدر کی جو وہ خود نہیں جانے اور وہ ایک پرکار سے بنا آدر کرے مہیما گائے اور سب کو اس بھاؤ سے دیکھے انہوں نے معلوم ہی نہیں کہ ساری یہ استھتی تو بھگوان کی اپنے لوگوں پر اتنی بھاری دیا ہے جب اٹھا ہوں ایک تو سامان دیا معمولی دیا लोकी जैसे भगवान बिना पीसा अपने रोशनी देवे सूर्य की, बिना पीसा सो अमृत के समान जल बरसाए, जल देवे और बिना पीसा के हवा देवे। सरकार से आप हवा ले तो पैसा लगे, पंखे का बिजली की रोशनी का भी पैसा लगे, टूटी एक प्रकार से नल लगाओ तो पैसा लगे, बिना पैसा बात ही नहीं। इतने में नहीं इनके सुबह और टिक्स सारे पर लगा रहे तो भगवान कोई भी टिक्स नहीं लगावे, कुछ भी एक प्रकार से नहीं देवे, देवे देवे ऐसे भगवान की या लौकिक दया है। इससे बढ़कर के और दया है, अपने घर के वहां कोई स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, आपको विनाश हो जावे तो अपने मन के बिल्कुल विपरीत, किंतु यह भी भगवान की मंगलमय दया है। अब अपने समझा नहीं है, इस वास्ते माना नहीं है तो वैसे विशेष लाभ उन चीज को नहीं हो, नहीं तो समझ दया दया भरी पड़ी। और ऐसे जो एक हृदय नीची वो दया कैसे मिलो, पुत्र मिलो, धन मिलो, ये सब चीजें मिली, तो यह जो दया है यह दया मन के अनुकूल पदार्थ के मिलने पर जो आपने दया माना पा तो साधारण है, और प्रतिकूल का मान विशेष दया, क्योंकि अनुकूल जो पदार्थ है जिक्र में तो चीज है उसमें तो प्रसार होने को डर है और उसके वह वैराग, मन के विपरीत कोई घटना घटे तो वह वैराग उत्पन्न हुए, वो अपने परमार्थ के विषय में सहायक है। आपने जो भगवान असली पुत्र धन रुपया जो कुछ दिया है ये भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए दिया है, उसका उपयोग ठीक किया जावे तो, और उसका दुरुपयोग किया जावे तो बुरो फल हुए। दुरुपयोग कैसे, कि अपने जो रुपया दिया उन रुपयों को भजन ध्यान में लगावे, परोपकार में लगावे तो उस आत्माओं कल्याण हो जावे, और उस रुपयों के द्वारा समझो कि पाप कर्म में लगावे, मदरा पीने में, मांस खाने में, व्यभिचार करने में तो वो नरक में से जा, वो नरक में जावे। तो रुपया नरक में ले जाने वाला भी है और मुक्ति देने वाला भी है, तो मुक्ति का काम तो बहुत कम आवे, और बस अहंकार बढ़े, अभिमान बढ़े, समझो कि खोटी खोटी बात बढ़े तो वह रुपया है सो पाप है। ऐसे ही आप जो लड़को है आपको हुक्म मान करके भगवान के भजन में लग जाओ तो बैंक को भी कल्याण हो रहा, आपने भी मदद मिले, आपने ऐसी है भजन ध्यान में लेकर भगवान की भक्ति करे तो बैंक को भी उद्धार हो रहा, आपने भी वैसे मदद मिले, क्योंकि पतिव्रता स्त्री हो तो वो पति सही थी भगवान के परम धाम में जावे। इसी प्रकार से सब पदार्थ जो अपने दिया है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान दिया है, और वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन सके, उन्होंने साधन बना लिया तो वह अपने मुक्ति देना हो जाए, और उन्होंने भोग में पाप में लगा दे तो वह अपने नरक देना हो जाए। तो अपने में जो बल है वो भजन ध्यान के लिए है, भजन ध्यान के वहां मदद करने वाला बल है सबको अपने, और मैंने आप असली भोग में लगा दे वहां तो डूब जाओ। तो इस प्रकार से सब आपा ने समझ करके किया, समझनी चाहिए कि जो अपना ऐश है, आराम है, स्वाद है, भोग है, रुपया है, कंचन है, कामनी है, मकान है, ये शरीर है, शरीर के मत त्यागत है, ये सारे पदार्थ एक प्रकार से थी समझो कि अच्छे काम में लगा दिया, भगवान के काम में लगा दे तो मुक्ति दे दे, और भोग आराम और पाप में लगा दे तो नरक में ले जाओ। तो ज्यादा लोग तो नरक में ही जाने की तजवीज कर रहा है, उत्तम काम में कहां लगा रहा है, तो इसलिए इनमें खटको है। और जो इन सबको विनाश है ऐसे जो एक प्रकार से अवसर है वो मुक्ति देने वाला, वो वैराग उत्पन्न करे, भगवान याद है, हे नाथ हे हरि, मेरे में ये बड़ो भारी संकट पड़ गयो, मेरो लड़को मर गयो, मेरी स्त्री मर गई, तो मैं भाने भी भगवान ने याद कर रहे है, याद करतो करतो मर जावे तो मुक्ति हो जा। जैसे आपने भरते मुनि हिरण में याद करतो करतो मरी तो हिरण हो गयो, तो इसी प्रकार से भगवान ने याद करता हुआ जाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब आपने विशेष लाभ देने वाली चीज है, हमें नुकसान तो है ही नहीं। तो अपने मन के विपरीत कोई घटना हुए, कोई पदार्थ की प्राप्ति हुए, तो वह उसमें भगवान की विशेष दया है, और मन के अनुकूल अगर के प्राप्त हुए बाकी दया है कि यदि मैंने आपा दया मान के मैं चीज अच्छे काम में लगा दे, वहां विपरीत काम में लगा दे तो उन विपरीत फल भी हो जाए। तो इसलिए से भगवान की दया अपने ऊपर अपार है, न समझने के कारण से उसके लाभ सापा बनती। नारायण नारायण हुए तो पुस्तक सुनाने का काम, नहीं योग्यता हो तो सुनने का काम, अपने शरीर को एक क्षण भी निकम्मा नहीं रखना और वो काम करना चाहिए खोल करके जो वर्तमान में मिलने वाले कामों में दामी से दामी हो, जो हमारे लिए इस लोक और परलोक में हितकारक हो। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो एक प्रकार से मटर की जो हमको ठेके में मिला हुआ है, इसका रुपया तो लाग ही चुका, इसका मूल पहला ले लिया गया है, हमारा ये विश्वास नहीं किया गया कि फिर तू मूल चुका देना। जैसे मटर के बीज के मां तेल उसके अधिकार में रहता है, उतना उतना हमारे अधिकार में छोड़ा है। वो तेल क्या है कि जल पीना और रोटी खाना, वो मटर दूसरे की है। कम से कम आपने समझो कि अपने तेल से काम चलाना चाहिए, जिस तेल का दाम कम हो और समझो कि शीघ्र मटर खराब न होए, ऐसा तेल का उपयोग करना चाहिए, पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, और उसका कलपुर्जा भी साबित बना रहे, क्योंकि कलपुर्जा बिगड़ जाएगा तो कलपुर्जा का पैसा हमारा ही लगेगा। तो हमारी जिम्मेवारी उसके कलपुर्जों की है, और उसके केवल ये नहीं कि इस मटर को हम श्रृंगारते हुए और इस मटर को एक प्रकार से आराम देने की, नहीं भैया, या मटर तो एक प्रकार से समझो कि 5 दिन तक ओसा में नहीं लिया, अब उसको ठंडी होने दो, और वो ठंडी होने के बाद से 1 घंटा काफी, दूसरी घंटा ठंडी होने के बाद चला उसको, क्योंकि रुपया लग चुके आपने तो ठेके पर आई थी, तो ये सीधे रूपये अपने मटर है, इसका मूल पहला लाग चुका है, और अपने समय पर इसका मालिक आकर ले जाएगा, आप ही तुम्हारे को खबर नहीं देनी पड़ेगी कि समय हो गया, उसके यहाँ समय दर्ज है, तुम्हारे तो दर्ज नहीं है। तो एक प्रकार से रुपया चुका दिया, निश्चिंत हो गए, किंतु ये अचानक जाके तुम्हारे घर से यहाँ, तो इसलिए मैं मालूम करी चलिया। तो जब तक ये अपना हाथ में है, कायम है, तब तक जल्दी से जल्दी अपना काम लेना चाहिए, जरूरी काम को पहला लेना चाहिए, कि जो काम मटर से होने वाला है, तुम्हारी आत्मा का जो कल्याण है वो मटर से होने वाला है, वो एक प्रकार से थी और दूसरी प्रकार से होने वाला नहीं है। तो जो काम मटर से होने वाला है यानी मनुष्य शरीर से होने वाला है, उस काम को पहले करना चाहिए, और जो काम मनुष्य शरीर के बिना भी होने वाला है उसके लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं जल्दी करने, वो अपने होता रहेगा। इसी प्रकार से जयराम जी को भी एक प्रकार से अपना सुधार करना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि हमको इतने वर्ष हो गए अध्यात्म विषय में, हमारे क्या लाभ हुआ
अरे नहीं हुआ तो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गाफलता है दूसरों की, तो ये समझना चाहिए कि आपकी गाफलता है दूसरों किसी की नहीं। दूसरा कोई भी किसी के अध्यात्म विषय का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान समझो कि लाठी लिए खड़े हैं। अध्यात्म विषय में कोई नुकसान हमारा पहुंचता है तो हम ही उसके वहां खुद ही हेतु हैं। तो हम शरीर से काम करते हैं तो वाणी से नाम का जप करें और सबसे करवाएं, मन से ध्यान करें और दूसरों का हित चिंतन करें कि दूसरों का हित कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबके साथ में दया का प्रेम का व्यवहार हुए, दया का व्यवहार हुए, त्याग का व्यवहार हुए, उदारता का व्यवहार हुए, किसी के हाकमी एक प्रकार से न करें, कोई हाकमी अपने पर न समझे और वो हाकमी पद के अनुसार करनी पड़े तो लज्जित होकर के करें, बिना भाव से करें कि भैया ये काम भी मुझको ऐसा सुनता गया, क्या कह जा कि एक प्रकार से हर एक बात के लिए आप लोगों को पूछना पड़ता है और सत्य बोलने पर विशेष ध्यान रखे। जैसे घरश्याम जैसे को धमकाना नहीं पड़े, ओलवा नहीं देना पड़े कि ये काम 15 महीना में करोगे, 15 दिन में या 15 वर्ष में, कितने उत्तेजना के वचन है आपके ही तो कारण ऐसे वचन कि 15 वर्ष क्यों कौन जीवेगा कौन मरेगा वो असंभव बात है, बिल्कुल ये थी उसके लिए 15 महीना कहना ही बहुत समझो कि अति मात्रा में। तो इस श्लोक को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए कि भाई किसी को भी उद्वेग का कारण नहीं बने, तो ये भी समझना चाहिए कि उनके उद्वेग का मैं कारण बनता हूं तो कहीं दूसरे का भी उद्वेग का कारण तो नहीं बनता हूं, तो मुझको तो किसी के भी उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहिए और मेरे द्वारा भी तो किसी को उद्वेग नहीं होता है ना, पर होता है तो उसका सुधार करना चाहिए। और आजकल के समय के बीच के मानी कमाई के दिन है तो अपना समय का उपयोग समझो कि पूरा लेना चाहिए, जो काम है उस काम के वहां समझो कि इतना उपयोग नहीं है, तो कोई चीजें का काम है, कोई मकान बनाने का काम है, कोई मशीन बनाने का काम है, कोई और कोई भी एक प्रकार से सब कामों को याद करना चाहिए बैठ करके के इस समय में हम कौन सा काम करें। जैसे कल्याण आप इसके बीच के वहां कल्याण आप इसके भाई लोगों को ये अपने काम कम हो तो ये ख्याल करना चाहिए कि भाई इस वक्त में निकमे हैं तो पत्ता बना दे, रिश्त बना दे या और कोई काम उसमें से खोज ले, उसमें से तो खोजने से मनुष्य को काम मिल जाया करता है। मैं तो अपनी तरफ देखता हूँ कि जब काम खोजता हूँ तो इतना काम आकर के प्राप्त हो जाता है कि एक प्रकार से मैं ये सोचता हूँ कि ये 24 घंटा के दिन में 5 घंटा सोकर के 19 घंटा तो मैं चला सकूं और 24 कैसे चलाऊं। पहला तो समझो कि मैं जब जवान था उस वक्त में तो कभी कभी 24 घंटा भी चलाया करता था, कलकत्ते जाता सत्संग के लिए तो उस समय में बहुत से भाई लोग आ जाते थे, तो दिन में तो समझो कि जहाँ व्याख्यान होता वहां व्याख्यान देते और रात्रि के वहां 5-4 भाइयों को सुना लिया करता था कि भाई रात के वक्त के वहां ऐसी ऐसी तुम्हारी टेमरी तुम यहाँ सो कमरे में सो जाओ, 2-2 घंटा बाद में उठाऊंगा सबसे एकांत की बात कर लू। तो रात के मैं एकांत की बात करने के लिए 5-4 आदमी को सुहा देता, ऐसा टेम करता कि भाई 10 बजे तक तो व्याख्यान हो रहा है तो 10 से 12 की समझो कि बद्रीदास की टेम, तो 12 से 2 की हनुमान दास की टेम, तो 2 से 4 की बैजनाथ की टेम, जो एक प्रकार से था वो बैजनाथ सिक्कर वाला एक वो मर गया बहुत अच्छा आदमी था, वो खूब सेवा करता था, जूता का काम उसी ने अपने हाथ से शुरू करा करके लड़कों को सिखलाया था, ये काम अपने गोविंद भवन में आरम्भ किया था और 2 घंटा उसके बाद उसकी टीम इस प्रकार से सारी रात एक प्रकार से ऐसे जिताता और फिर दिन में समझो स्वस्थान करके व्याख्यान शुरू करता। तो दिन में तो घूम फिर करके व्याख्यान देना, रात के मां आत्माराम जोरी गद्दी के बीच के मां आदमी को सुहा करके ऐसा काम करना और उसका कोई असर नहीं आना अपने शरीर के ऊपर, निद्रा का कोई शरीर पर असर नहीं आना। और अब 5 घंटा जब नहीं सोते हैं, 4 घंटे या 3
नारायण 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 नार
प्रभु।